हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव ने तारा को छोड़ दिया था। तारा को इस बात की हैरानी थी कि उसने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। ऊपर से ध्रुव ने उसके पीछे कोई आदमी भी नहीं भेजा था। तारा इस वक्त बेंगलोर के मार्केट के बीचों बीच खड़ी थी, जहां ध्रुव के भेजे ऑटो ने उसे छोड़ा था। तारा एक बार फिर उसी सिचुएशन में आकर फंस गई थी जहां उसे ध्रुव के पास जाना था, लेकिन वो उसके करीब पहुंचकर भी एक बार फिर उससे दूर हो गई। तारा गुस्से में जोर से चिल्लाई। इससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो पैर पटकते हुए मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, वो क्या कहीं का शहजादा है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? आज से पहले भी मैं मिशन के लिए कई माफिया से मिली हूँ। वो मुझे देखकर ही मेरे पीछे लट्टू हो जाते हैं, लेकिन ये तो ठीक से देख तक नहीं रहा या देखकर भी इग्नोर कर रहा है। अब तो ये मिशन मैंने पर्सनली ले लिया है ध्रुव राणा। मुझे पुलिस और दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आना है, पर उससे पहले तुम्हें इस तारा के आगे झुकना होगा। मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझे कैसे इग्नोर करते हो। तारा काफ़ी एटीट्यूड वाली लड़की थी। इस तरह ध्रुव का इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। तारा काफ़ी वक्त से गायब थी, तो मार्टिन भी उसे ढूंढ रहा था। तारा अब मार्टिन की नज़रों से दूर थी। अब वो कबीर से बात करके उसे अपनी अपडेट दे सकती थी। तारा के पास उस वक्त पैसे नहीं थे और ना ही मोबाइल, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आसपास के लोगों से मदद के लिए मोबाइल मांगा तो उन्होंने उसे दे दिया। तारा ने सबसे पहले कबीर को कॉल किया। सर, मैं बोल रही हूँ तारा। तारा ने इतना ही कहा कि सामने से कबीर की आवाज़ आई। वो परेशान स्वर में बोला, कहाँ गायब हो यार तुम? तुम्हारा मोबाइल बंद जा रहा है, घर भी नहीं पहुंची, तो उनके कॉल्स अलग से आ रहे हैं। आप उन्हें बोल दीजिए कि मैं अपने काम पर ही गई हूं, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपके डेवल तक पहुंच चुकी हूं मैं, तारा ने काफ़ी कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा। क्या सच में? कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका, मैं यहाँ बैकग्राउंड से उसके बारे में सब कुछ पता लगाता हूँ और तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। कबीर ने सबसे पहले डेविल और उसके बेटे का नाम जानना चाहा, तो तारा चुप हो गई। न जाने क्यों कबीर के सामने तारा ध्रुव का नाम नहीं बता पाई और उसने उसे टालते हुए कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस वक्त मैं माफिया के अंडर काम कर रही हूँ। अगर आपसे ज्यादा बात की या कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी तो उन्हें शक हो सकता है। मैं टाइम मिलने पर अपनी फैमिली से बात कर लूंगी, डोंट वरी, और मेरी चिंता आप मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, तारा ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। तारा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद से बोली, पता नहीं क्यों कबीर सर को ध्रुव का नाम नहीं बताया, पर ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी है। एक दिन नाम भी बताऊंगी, वो भी पूरी दुनिया के सामने, और उसका असली चेहरा भी सबके सामने आएगा। तुम्हारी दुनिया ये तारा खत्म करेगी ध्रुव राणा। बात करके नंबर डिलीट करके तारा ने उन्हें मोबाइल वापस लौटा दिया और फिर मार्टिन के पास जाने लगी। उसने फिर अपने लिए कैब हायर की। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही शख्स चल रहा था और वो था ध्रुव राणा। एक बात तो तय है कि तुम उस क्लब में आते रहते हो और तुम्हें खुद पर यकीन दिलाने के लिए मुझे वहां काम करना ही होगा। मुलाकातें होती रहेगी ध्रुव राणा, तारा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ तारा को फ्री करने के बाद ध्रुव और वीर ऊपर देव शेरगिल के पास थे। देव शेरगिल को उन्होंने बांध रखा था और इस वक्त ध्रुव के हाथ में एक प्लकर था जो डेंटिस्ट यूज करते थे। ध्रुव ने देव शेरगिल का मुंह पकड़ रखा था और प्लकर को उसके मुंह के पास लगा रखा था। वो उससे बोला, बात को घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा, सीधे सीधे बताओ दक्ष मल्होत्रा किसके कांटेक्ट में है? वो मुंबई वापस आया है जहां उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। वो डेविल से पंगा लेने का सोच रहा है। मेरे डैड के सामने तक आने की उसकी औकात नहीं है उनकी, और अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां वापस आया है। मुझे उसका पूरा प्लान जानना है। बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहे हो, प्लान तुम्हें जानना क्यों है? थोड़े टाइम बाद खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या हुआ, डेविल और उसके बेटे को डर लग रहा है कि उनके साम्राज्य उनसे छीनने जा रहा है? देव शेरगिल हंसते हुए बोला। उसे हंसता देखकर ध्रुव ने सर्द निगाहों से उसे देखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, और क्या हो जो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूं कि हंसने से पहले तुम्हें दो बार सोचना पड़े? देव ध्रुव की बात समझ पाता उससे पहले ध्रुव ने उसका मुंह पकड़ा और प्लकर से उसके आगे का दांत पकड़कर बाहर खींच लिया। दर्द के मारे देव शेरगिल की हालत खराब हो रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वहीं सब देखकर वीर ने एक बार के लिए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, दांत इसका उखड़ रहा है और दर्द मुझे हो रहा है। पता नहीं ये इतने इनोवेटिव आइडियाज लाता कहाँ से है। जब भी इसके साथ होता हूँ हर बार सामने वाले बंदे को नए नए तरीके से टॉर्चर करता है। वीर ने फिर से देव शेरगिल की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और ध्रुव बिना किसी भाव के उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव राणा, देव मुश्किल से बोल पा रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था, ऊपर से दांत निकालने की वजह से उसे दिक्कत भी हो रही थी। अचानक उसकी फिर से जोरदार चीख निकली। वीर ने देखा ध्रुव ने उसकी उंगली को प्लकर से बुरी तरह कुचल दिया था। ध्रुव ने कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उठते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझे उसका प्लान नहीं बताओगे। ध्रुव राणा को फालतू में टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हें यहाँ बैठकर टॉर्चर करता रहूं। इससे अच्छा यही टाइम मैं अपनी क्रिश को देना चाहूंगा। बहुत जल्दी समझ आ गया तुम्हें कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। सही सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम टाइम वेस्ट नहीं करते हो। अपना टाइम बचाओ और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। ऐसी सिचुएशन में भी देव हल्के से मुस्कुराकर बोला। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर धीरे से कहा, लो छोड़ दिया। देव शेरकिल ध्रुव के खोलने का इंतजार कर रहा था। तभी ध्रुव ने अपने वेस्ट पैंट से गन निकाली और उसके माथे के बीचों बीच शूट कर दिया था। ध्रुव के उसके गोली मारते ही वीर ने जल्दी से कहा, ये क्या किया तुमने? ये हमारे काम आ सकता था। युग अंकल ने तुम्हें आने से पहले ही कहा था कि किसी को मारना नहीं है, हॉस्टेज बनाकर रख लेना। बट दिस इज नॉट माई स्टाइल वीर, डैड को बोलो हॉस्टेज बनाकर रखना है तो काम भी खुद ही करे। ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा और फिर वहां से जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने तेज आवाज में कहा, शाम को उसी क्लब में चलेंगे, वहां इसके बाकी आदमी जरूर आएंगे, क्योंकि वो क्लब किसी और का नहीं बल्कि दक्ष मल्होत्रा का ही है। वीर ने उसकी बात पर हामी भरी। ध्रुव वहां से चला गया। वीर ने शेरगिल की लाश को ठिकाने लगा दिया था। रात के 12 बजे के करीब वीर और ध्रुव दोनों क्लब में थे और वहां बार काउंटर पर खड़े थे। ध्रुव ने अपनी ड्रिंक बनवाई और फिर वो दूसरी तरफ पलटा तो उसकी नजर तारा पर गई, जो हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे लेकर सबको सर्व कर रही थी। उसे देखते ही ध्रुव की आंखें छोटी हो गई और अजीब नजरों से उसे देखने लगा।